अपनी उत्पत्ति के तीसरे समय में सर्व जघन्य अवगाहना वाला बन जाता है। पहले क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर का मतलब लंबाई और चौड़ाई वाला, बल्कि ये कह लो कि वो है तो क्यूब शेप्ड, लेकिन इस प्रकार से उसके ये थ्री डायमेंशनल, थोड़ा लंबाई भी रहेगी और फिर चौड़ाई अलग रहेगी। उसके बाद क्या होता है कि वो ऐसे होता है, थोड़ा सा संकुचित होता है, तो फिर एक चौरस डब्बे जैसा उसका आकार हो जाता है। और उसके बाद जो उसके कोने होते हैं वो और उसमें अंदर समाहित हो जाते हैं, तो एक ऐसा स्फीयर बन जाता है। तो सबसे कम क्षेत्र किसका है, पहले वाले का कि दूसरे का कि तीसरे का? तीसरे का। तो उत्पत्ति के तीसरे समय में निगोदिया जीव की जो अवगाहना होती है वो संसार के समस्त जीवों से अल्प होती है। लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव की बात है, सब सर्व जघन्य अवगाहना। और ज्ञान की अपेक्षा विचार करें तो सर्व जघन्य ज्ञान वो प्रथम समय में होता है। तीसरे समय में ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, लेकिन प्रथम समय में ज्ञान जो होता है सर्व जघन्य होता है, उसका नाम है पर्याय, पर्याय ज्ञान, श्रुत ज्ञान का सबसे छोटा भेद। फिर मति ज्ञान तो जितना है सो है, एक इंद्रिय है उनकी, लेकिन पर्याप्त तक न होने के कारण फिर कितना जानेंगे ये अपन नहीं कह सकते, लेकिन है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों का उल्लेख है। तो इतना जो सबसे छोटा निगोदिया जीव है वो भी आकाश के असंख्यात प्रदेशों में ही पाया जाता है। असंख्यात प्रदेशों से कम स्थान पर जीव नहीं रहते हैं। अब शंका आपको समझ में आना चाहिए, शंका समाधान तो बाद की बात है। शंका क्या थी कि लोक एक है और लोक के अंदर रहने वाले पृथ्वी जल अग्नि और वायु, ये चार प्रकार के जो जीव हैं, कायिक माने जिन्होंने काया बनाया है पृथ्वी को अग्नि को जल को वायु को, ये चार प्रकार के जीव स्थावर असंख्यात लोक प्रमाण है। मतलब लोक का जितना स्थान है उससे असंख्यात गुने उनकी गिनती है यहां पर। तो सवाल ये उठेगा कि एक जीव जब असंख्यात प्रदेश में रहता है तो फिर सारे लोक में ही एक हिसाब से रह पाएंगे, लेकिन उससे असंख्यात गुने जीव कैसे रह सकते हैं? तो उसका उत्तर यह है, अवगाहनावशात, अवगाहन शक्ति वशात। क्या कि सूक्ष्म पर्याय में जो जीव रहते हैं, सूक्ष्म नाम कर्म के उदय वाले जितने जीव हैं, वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, एक स्थान में अनेक समा जाते हैं, बहुत सारे। वनस्पतियों की निगोद की बात नहीं कर रहे हैं, ये चार अन्य जो स्थावर हैं उनकी चर्चा है। तो एक स्थान पर बहुत सारे आ जाएंगे। तो जैसे एक कमरे में आप एक लाइट जलाओ तो उसका प्रकाश फैल जाता है, दो जलाओ तो दो का, तीन जलाओ तो तीन का, चार छः आठ दस पंद्रह बीस, जितने लगा सकते हैं आप बल्ब उतने लगा दो। तो जैसे एक कमरे में सबका प्रकाश समा जाता है, उसी प्रकार एक क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे जीव समा जाते हैं, जितने भी सूक्ष्म नाम कर्म के उदय वाले होंगे वो। तो इस अपेक्षा से पूरे लोक में असंख्यात लोक प्रमाण वो चार स्थावर जीव हो सकते हैं, उसमें कहीं आपत्ति नहीं है। वो तो कह रही है, लेकिन अभी यहां निगोदिया की हमने चर्चा अभी नहीं छेड़ी, अभी ये शेष चार स्थावरों की बात है। क्योंकि उसमें अगर बादर नाम कर्म वाले होंगे, क्या होता है कि बादर निगोद जो जीव हैं वो किसी वनस्पति के आश्रित रहते हैं, इतना भर अंतर है, और बाधित होते हैं, उनका मरण भी होता है। जैसे किसी ने जमीकंद को किसी प्रकार से खाने के लिए ले लिया तो फिर उसमें रहने वाले जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं, बाधा को प्राप्त हो जाते हैं, वो बादर निगोदिया जीव है। अब सूक्ष्म निगोदिया जीवों को तो बाधा हो नहीं सकती, अगर कोई मन में सोच ले कि ये, तो वो मानसिक रूप से उनकी हिंसा मन से हो सकती है, लेकिन वैसे करना मुश्किल है। या फिर हाथ पैर फटकारे कि भाई कोई सूक्ष्म जीव भी आ जाए चपेट में दुर्बुद्धिवश, तो वो भी ऐसा कर सकता है, काय योग से भी वैसे हिंसा कर सकता है। वनस्पति काय का अनंतानंता, वनस्पति का एक जीव जो होते हैं वो अनंतानंत होते हैं। मिश्रित हो गया, एक लोक में जितने प्रदेश, क्यों नहीं? वो अनंत हो गया, अनंत हो गया, क्योंकि निगोद की गिनती दी है, अथि अनंता जीवा जेहीन पत्तो तस्साण परिणामो भाव कलंक सुपरवा निगोदवासम न मुंचित। निगोदवास में कितने जीव हैं? अथि अनंता जीवा, अनंत जीव हैं। नहीं, क्यों? वायु कायिक में क्या आपत्ति है? असंख्यात लोग, असंख्यात असंख्यात प्रकार के हैं, तो फिर ये सारे के सारे भी असंख्यात हो तो भी असंख्यात लोग ही कहेंगे, तो ठीक है ना। तो अभी भी हैं वनस्पति कायिक, अभी भी ज्यादा है सबसे। क्यों नहीं? नहीं तो निगोद शरीर कितने हैं लोक में, इस पर अपन विचार करें तो निगोद शरीर अनंत नहीं है? है अनंत? नहीं, जीव अनंत है। नहीं, निगोद शरीर का जो परिमाण दिया है गोमट सार में, क्या दिया है? खंडंडर आवासा है ना, अयोध्या आदि का दृष्टांत दिया, जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंड, अयोध्या नगरी और उसके अंदर रहने वाले मोहल्ले। तो ऐसे उनने विभाग किए कि एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का मतलब यह है कि जिस वनस्पति में निगोद तिष्ठता है, प्रतिष्ठित है, जैसे मान लो उसकी पहचान बताई, साधारण वनस्पति भी कहते हैं उसको, अनंत कायिक भी बोलते हैं, तीनों नाम एकार्थवाची। तो क्या हुआ, कोई ऐसी वनस्पति जिसमें रेशे ना हो और जिसको तोड़ने पर संभंग हो जाए, जैसे छुरी से आपने विभाग कर दिए हो किसी चीज के, वैसे ही दो विभाग हो जाए, तो ऐसी वनस्पति में निगोद की प्रतिष्ठा है, ये एक चिन्ह हो गया जानने का उपाय। कि अब लोग भिंडी खरीदते हैं तो भिंडी खरीदते समय वो पीछे का वो ऐसे तोड़ करके खरीदते हैं, अब वहां रेशे नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अंश है उसका, वो जो हिस्सा है, जितने हिस्से में रेशों का विस्तार है वो तो अप्रतिष्ठित हो गया, वहां से निगोद राशि निकल गई, लेकिन जिन हिस्सों में वो कोमलता है या जो जो लक्षण दिए हैं उसको आप देख लीजिए गुमटसार में और फिर इसमें भी आना है कार्तिक अनुप्रेक्षा में, तो वो जो स्थान है वो वनस्पति सब प्रतिष्ठित होती है। सब प्रतिष्ठित का अर्थ अनंत का है या साधारण वनस्पति जिसमें निगोद भी है, तो वो उसके आश्रित रहने वाला निगोद, वनस्पति के आश्रित रहने वाला निगोद, उसको बादर निगोद कहते हैं, और जो अनाश्रित है वो सूक्ष्म निगोद है, किसी के आश्रित नहीं रहता। अब होता क्या है कि वो कितना रहता है, उसकी उसका परिमाण क्या है, उसको बताने के लिए उसमें एक गाथा लिखी है, एक सुई की नोक पर वो सब प्रतिष्ठित वनस्पति का छोटा सा हिस्सा ले लो, उसमें असंख्यात लोक प्रमाण स्कंध होंगे, क्या असंख्यात लोक प्रमाण स्कंध होंगे, और असंख्यात लोक प्रमाण स्कंधों में एक स्कंध अगर अपन पृथक करें तो एक स्कंध में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर होंगे, फिर एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास होंगे, एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियां होंगी, और एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होंगे, और एक निगोद शरीर में अभी तक जितने मोक्ष चले गए सिद्ध भगवान उनसे अनंत गुने जीव होंगे। इसीलिए उस प्रश्न का समाधान हो जाता है कि भाई संसार से जीव मुक्त तो हो रहे हैं, कभी खाली हो गया संसार तो खाली होने का सवाल नहीं, आज तक जितने जीव मोक्ष चले गए हैं उनसे अनंत गुने जीव एक निगोद शरीर में है, जब एक निगोद शरीर के बराबर मुक्ति नहीं हुई जीवों की, तो असंख्यात निगोद शरीर जो सारे लोक में है उनका कैसे अंत हो सकता है, इतने जीव हैं। तो और दूसरी युक्ति देख लीजिए आप उस बात को समझने के लिए कि निगोद शरीर अनंत क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एक निगोद शरीर में एक जीव जितने स्थान में रहता वो पूरा क्षेत्र घेर कर रहता, वो क्योंकि शरीर एक है और जीव के प्रदेश उस पूरे शरीर में फैले हुए हैं, तो वो जीव के शरीर कितने प्रदेश में फैलते हैं, आकाश के असंख्यात प्रदेश में। और फिर उसी स्थान पर निगोद शरीर का मतलब यह है नियताम गाम ददाते अनंतानंत जीवानाम इति निगोदम, उसकी व्युत्पत्ति दी है कि नियम से जो गाम यानी भूमि स्थान अनंत जीवों को एक साथ प्रदान करता है उसका नाम है निगोद। तो एक निगोद शरीर में एक जीव नहीं रहेगा, अनंत जीव रहेंगे। वो श्वास लेगा तो सारे सांस लेंगे, वो जन्मेगा तो सारे जन्मेंगे, वो मरेगा तो सारे मरेंगे, एक श्वास में 8-10 बार, वो निगोद की बात है। तो इसलिए निगोद शरीर सारे लोक में असंख्यात ही होते हैं। इसमें अभी और कोई शंका रहेगी? कर्माश्रव अलग हो सकते हैं, नियम नहीं है बहुत, जो अनादि निगोद नित्य निगोद वाले हैं बिल्कुल, वो तो उसमें एक दृष्टांत देते भड़ भूजेगा, चने को जो भूंजता है ना एक एक उसमें पट 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 ऐसी आवाज आती है और कुछ उचट करके बाहर आ जाते हैं, बाकी सब तो उसमें भट्टी में सिक जाते हैं। बस इसी प्रकार 608 जीव वहां से बाहर निकलते हैं निगोद से 6 महीने 8 समय में। ये संख्या 3 जगह आती है, 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से बाहर आते हैं, 608 जीव मोक्ष जाते हैं और 608 जीव क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तत्वार्थ वार्तिक में दिए हुए राजवार्तिक। तो वनस्पति का एक अनंतानंद होते हैं, त्रस कायिक संख्या पंचेंद्रियवत, त्रस कायिक जीवों की संख्या पंचेंद्रियों के समान ही है समझ लो, क्योंकि जो विकलत्रय वाली संख्या है वो कोई बहुत भारी संख्या नहीं है, असंख्यात तो है ही वो लेकिन बहुत बड़ा असंख्यात नहीं है। अब इसके बाद अनंत अनंत, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण एक असंख्यात का भेद हुआ और अनंतानंत तो अनंत में अनंत का गुणा कर दिया, बहुत बड़ा हो गया। कायानुवाद की अपेक्षा वर्णन हो गया था, पृथ्वी कायिक, अप कायिक यानी जल कायिक, वायु कायिक, तेजस कायिक बीच में था, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, इन 4 कायों वाले जो जीव हैं असंख्या लोका है, असंख्यात लोक प्रमाण है। वनस्पति कायिका अनंता नंता, वनस्पति कायिक जीव अनंतानंत है। त्रस कायिक संख्या पंचेंद्रियवत, त्रस कायिकों की जो संख्या है वो पंचेंद्रियों के समान है। अब इसमें वनस्पति कायिक के बारे में ज्यादा चर्चाएं रहती है, बादर वनस्पति सूक्ष्म वनस्पति, अब बादर में भी फिर सब प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, सब प्रतिष्ठित प्रत्येक उसको कहेंगे जिसमें बादर निगोद की प्रतिष्ठा है, यानी प्रतिष्ठा सहिता इति सब प्रतिष्ठिता, सब प्रतिष्ठिता चासो वनस्पति सब प्रतिष्ठित वनस्पति, ऐसे भेद बनेंगे उसके। तो आगम के उल्लेखानुसार गोमटसार जीवकांड आदि ग्रंथों में ये खुलासा मिलता है कि प्रारंभ में जब बीज से अंकुर निकलता है, जैसे बीज में वनस्पति का एक जीव आया, तब एक स्थिति बनती है, अंकुर निकलता है थोड़ा बड़ा होता है तब अलग स्थिति बनती है, फिर जब बड़ा पेड़ हो जाता है उसमें रेशे और सारी चीज़ें बन जाती है तब अलग स्थिति होती है, और फिर नए नए पत्ते जहाँ से उगते हैं वो वाला भाग भी बादर निगोद से प्रतिष्ठित रहता है, इसलिए कोमपल है। या फिर जैसे उसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में और आगे चल करके इसका विस्तार आने वाला है कि वो जहाँ से नया पौधा उग सकता है वो वाला भाग, जैसे गन्ने में वो जो बीच वाला गांठ का हिस्सा होता है वहां से नया अंकुर आ जाता है, और आलू वगैरह जो वनस्पतियां हैं जमीन के नीचे होने वाली उसमें भी जहां से अंकुर उत्पन्न होते हैं वो, और इन जमीकंद वनस्पतियों में भी दोनों स्थितियां बन सकती हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। पर चूंकि विशेष आरंभ द्वारा ही उनकी उपलब्धि होती है, इसलिए कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी निषेध है उसका। सर्वार्थ सिद्धि में तो आर्द्रक मूलानी अनंत काय व्यपदेश आरहाणी, इसी में सर्वार्थ सिद्धि में आगे चल करके न सेवनीयानी, सेवन करने योग्य नहीं अभक्ष्य। अब उसमें मूल मूली और अदरक का नाम दिया है तो उससे और भी उसके जैसी अन्य वस्तुएं भी ग्रहण कर ली जाती उपलक्षण से। उपलक्षण एक मूलक मार्द्राणी श्रृंग वेराणी, हाँ गिली अदरक और श्रृंग वेर मूलक, मूलक माने मूली है और आर्द्राणी श्रृंग वेरा गिली अदरक आदू बोलते हैं यहाँ गुजराती में, उसका निषेध किया। और क्या पूछ रहे हैं? वो निकाल लेते हैं लोग विधान, पर अभी हम लोगों ने स्वाध्याय किया था तो उसमें बहुत सुंदर उसका अर्थ निकला था। मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योत्ति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति। जो मूल को, फल को, शाख को, शाखा को, करीर यानी कोई वनस्पति का कोई हिस्सा है, फिर कंद और प्रसून यानी पुष्प और बीजों को कच्चा नहीं खाता, वो पांचवी प्रतिमा का धारी है। अब इसमें फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर पकाकर खा सकता है? पकाकर खा लेगा फिर? कंद मूल आदि सब खा सकता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि कच्चा नहीं खाता, वो दया मूर्ति सचित्त विरत नाम का पंचम प्रतिमाधारी है। लेकिन जिसका निषेध 12 व्रतों में हो चुका है उसका विधान पांचवी प्रतिमा में कहां से होगा, ये सोचने की बात। और उसमें जो नाम दिए हैं, जिन वस्तुओं के नाम दिए हैं वो औषध रूप से और कदाचित पथ्य रूप से अगर ग्रहण करता है तो अपवाद स्थिति में उसका निषेध नहीं है। कच्ची अवस्था में वहां वो फिर भी नहीं ले सकता उन चीजों को। औषध रूप में कौन से कंद मूल आएंगे? हल्दी है, सौंठ, सौंठ बोलते हैं गुजराती में, ऐसी कुछ चीजें नहीं। अब देखो अर्थ निकालना है ना, तो अगर अपन आचार्यों से विपरीत अर्थ निकालेंगे तो फिर पूरी प्ररूपणा उलट पुलट हो जाएगी और आगम विरुद्ध हो जाएगी। और फिर एक बात आती है, सचित और अचित किसको माने? तो सचित चित्तेन सह वर्तते तत् सचित्तम, जो जीव सहित वर्तमान है उस वनस्पति को सचित्त वनस्पति कहते हैं, और तद रहितम अचित्तम, उससे रहित जो है वस्तु वो अचित्त है। अचित्त कह लो, प्रासुक कह लो, एक बात है, और सचित्त कह लो, अप्रासुक कह लो, अथवा हरित कह लो, वनस्पति के बारे में बता रहे हैं, तो वो सब एकार्थवाची है। हरित का मतलब हरा रंग हो वो हरित वनस्पति, ऐसा नहीं है। अभी सूखे चने भी हरे आने लग गए आजकल, वो बात नहीं है। मटर सुखा लो तो भी हरा तो रहता ही है, वो बात नहीं है। यहाँ हरित का मतलब सचित्त से ही अपेक्षित है, विवक्षित है। तो फिर प्रासुक किसको माना जाए, ये शंका आती है। तो इसमें दो प्रकार की चर्चाएं चलती है कि जो पेड़ से अलग हो चुका सो प्रासुक। अब अलग कैसे हुआ, करने पर हुआ या प्रकृति से हुआ, ये दोनों भंग बनाने पड़ेंगे। तो श्रावकाचार संग्रह में एक स्थान पर ऐसा उल्लेख है कि कुछ वनस्पति के हिस्से ऐसे होते हैं जो कालपक्व होकर प्रासुक हो जाते हैं, और बाकी ऐसे होते हैं जो अग्निपक्व होने पर प्रासुक होते हैं। ये दो भेद बहुत आवश्यक है समझना, नहीं तो फिर अगर एक को आप पकड़ करके रखेंगे तो फिर काफी विवाद होगा। आप कुछ लोगों को देख करके सोचेंगे कि ये तो जानते ही नहीं जैन धर्म, और कुछ आपको लगेगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये भी बात हो सकती है। क्योंकि सामने वाले को अज्ञानी देखकर मैं ज्ञानी हूँ ये बोध तो होता ही है, और उसके साथ अगर मान कषाय आ गई तो फिर मत भी आ सकता है कदाचित। तो दो प्रकार के जो पक्व, और फिर उसमें क्या पांच भेद बताया प्रासुक के, और पांच भेद यदि वो गाथाकार कौन है, किन्होंने वो गाथा दी है प्राकृत की, सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिल लवणी ही मिस्यम दव्वम जंतेण जन छिलनम तम सव्वम फासुयम भणियम, ये जो पांच प्रकार के प्रासुकों के भेद बताए हैं, ये गाथा यदि किसी विद्वान की स्वकल्पित रचना होती, आगम से विरुद्ध रचना होती, तो इसका जैन शास्त्रों के बड़े बड़े दिगंबर आचार्य जो टीकाकार हैं वो उल्लेख नहीं करते। तथा चोक्तम कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में दिया, और भी अन्य ग्रंथों में आप देखें तो इस गाथा का उल्लेख किया है प्रासुक के प्रकरण में। तो प्रासुक पांच प्रकार के हो गए, जो वनस्पति सूख चुकी है सो प्रासुक है एक भेद। फिर दूसरा भेद, जो पक चुकी है वो प्रासुक है। अब पक्व के दो भेद श्रावकाचार संग्रह में एक संग धर्मोपदेश पीयूष वर्ष श्रावकाचार, या ऐसा ही कोई नाम, अभी एकदम परफेक्ट तो नहीं बोल रहे हम, लेकिन श्रावकाचार संग्रह में उसका उल्लेख है। काल पक्व और अग्नि पक्व, पक्व के दो भेद किए हैं। फिर तीसरा तत्तम, तपाया हुआ। अब तपाया हुआ का क्या मतलब है, जैसे भुट्टा है उसको कढ़ाई में डाल करके पकाया नहीं जाता, वैसे पका भी लेते हैं उसकी फिर दूसरी जो आइटम्स है वो, तो अभी आजकल सब संजीव कपूर वगैरह से सब सीख गए हैं दुनिया के लोग और कई किताबें निकली है भोजन के ऊपर से। तो ऐसा है कि जो ऊपर सेका जाता है, जिसको चने भी हैं हरे वाले जो चने आते हैं उनको अग्नि में सेक लिए जाते हैं, और इस प्रकार से और भी कोई वस्तु जिसको सिर्फ तपाने मात्र से सेवन करने योग्य बनाया जा सकता है, वो जो वस्तुएं हैं वो सब प्रासुक हैं। तो सूखा, पका हुआ और तपा हुआ। और तीसरा भेद अम्बिल लवणी ही मिस्यम दव्यम, मतलब अम्बिल लवणी ही, आम्लरस और लवण आदि से बहुवचन दिया, इनसे मिश्रित कोई पदार्थ हो, जैसे उदाहरण के लिए किसी वस्तु को प्रासुक करने के लिए उसमें ऐसे मिर्च मसाले वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसे डाल दी, अथवा जैसे पानी को ही प्रासुक करना है किसी को। अब यहां दव्वम शब्द दिया तो द्रव्य शब्द से वनस्पति भी आ जाती है, और फिर जो पृथ्वी का एक नमक है वो भी आ जाता है, और जल का एक जल है वो भी आ जाता है। क्योंकि प्रासुक सचित्त त्याग में सिर्फ सचित्त वनस्पतियों का त्याग नहीं है, सचित्त जल का भी त्याग होगा, और पृथ्वी का एक संबंधी जो सचित्त है सेंधव नमक बोलते ना, उसका भी सचित्त अवस्था में त्याग होगा। तो उसको फिर क्या करेगा, वो इन विधियों से प्रासुक करेगा। नमक को जब कुछ उसमें मिला लिया जाता है, अथवा पानी में यदि लवंग आदि डाल करके उसका थोड़ा सा स्वाद अथवा रंग परिवर्तित होता है, तब वो प्रासुक माना जाता है। गर्म करने वाला एक प्रासुक विधि अलग है, गर्म करके प्रासुक करने की, और ये भी एक विधि है प्रासुक करने की। और पांचवा जो प्रासुक है जंतेण या जम छिन्नम, जो यंत्रों के द्वारा छिन्न है, छिन्न अर्थात कटा हुआ। अब उसको उपलक्षण मानकर छिन्न शब्द को, जो पीसा हुआ है अथवा चटनी के रूप में बनाया हुआ है उसको भी प्रासुक माना जाएगा। और यंत्र से ये छिन्न को उपलक्षण मानकर पीलित जो होगा, जैसे किसी यंत्र में किसी चीज का रस निकाल लिया आपने, वो रस भी प्रासुक माना जाएगा। रस को गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं यदि यंत्र से निकाला हो तो। और फिर यंत्र को अगर उपलक्षण मानो तो फिर मौसम्बी अनार आदि का यदि यंत्र में जिस प्रकार ये रस निकलता है उसी प्रकार अगर आप कपड़े आदि से भी निचोड़ करके रस निकालते हैं। ये सारी चीजें क्या है कि एक चीज बोलने पर उसी को शब्द से नहीं पकड़ना चाहिए, उसके भाव को लेकर के और भी जो उस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं उनको भी ग्रहण कर लेना पड़ता है। अब इसमें एक शंका आती है कि जब वनस्पति की अवगाहना अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है तो फिर कोई पेड़ से टूटी हुई वस्तु बिना अग्नि पक्व किए सेवन करने योग्य कैसे हो सकती है? गर्म खोलता हुआ पानी लेकर के प्रासुक करो या फिर किसी भी तरीके से करो या तो आग में पका लो उसको तवे वगैरह में कहीं भी। तो इसका उत्तर यह है कि वनस्पति की जगन्य अवगाहना, अवगाहना का मतलब आकार प्रकार, वनस्पति की जगन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यात विभाग है, मध्यम अवगाहना के असंख्यात भेद हैं और उत्कृष्ट अवगाहना का भेद जो है वो स्वयंभू रमण द्वीप में जो स्वयं प्रभ नगेंद्र के ऊपर पहाड़ के ऊपर एक सरोवर है उस सरोवर में उगने वाला कमल है, उस कमल की अवगाहना वनस्पति की उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन है। यदि सारी वनस्पतियों को अपन अंगुल का असंख्यात भाग मान ले तो फिर वो 1000 योजन वाले कमल का उल्लेख शास्त्रों में व्यर्थ ठहरेगा। इसी प्रकार मध्यम अवगाहना के जो असंख्यात भेद बताए हैं शास्त्रों में, इसका मतलब ये हुआ कि जो पेड़ पौधे हैं अप्रतिष्ठित जो वनस्पति है, अप्रतिष्ठित वनस्पति का मतलब ये है कि उसमें निगोद नहीं है, अकेला वो एक वनस्पति का एक जीव है। आ रहा समझ में? अब एक वनस्पति का एक जीव है, उस पेड़ में से कोई फल अगर तोड़ लिया जाए तो वो सचित है कि अचित है? उसमें से कोई पत्ता तोड़ा जाए तो वो सचित है कि अचित है? एकदम जल्दी से अपन इसमें निर्णय ना करके थोड़ा शास्त्रों में ही देख ले, इसी में देख ले, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के 7वें अध्याय में जहां भोगोपभोग परिमाण के अतिचार बताए हैं अथवा अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार बताए हैं। क्या बताए हैं अतिचार? सचित निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। अब सचित निक्षेप क्या चीज है? खोल लो, चलो उस पेज को ही खोल लो, एकदम साक्षात आचार्य महाराज की वाणी मिल जाए तो आज इस बात का समाधान अच्छे से हो सकता है, नहीं तो मन में वो चीज खटकते रहती, जब तक शंका का समाधान ना हो वो शंका दिमाग खराब करती है। एक बार आचार्य श्री सर्वार्थ सिद्धि पढ़ा रहे थे तो उनने बोला था कि शंका पूछने में ज्यादा उतावली नहीं करना चाहिए, जब प्रसंग आए तभी पूछना चाहिए। अब 2वें अध्याय में हमारे दिमाग में पता नहीं कहां से कोई शंका पैदा हो गई, अब प्रसंग आया ही नहीं, और प्रसंग आया तो बहुत अध्यायों के बाद आया, तब हमने पूछा और तब हमारी समझ में आया कि देखो इतना धैर्य रखने से भी जो अंदर उत्कंठा रहती है उससे एक प्रकार से वो मतलब संतति रूप से स्वाध्याय बना रहता है। संत वो परिणाम तो है ना अपने को उसका समाधान पाने के, तो वो संतति रूप से स्वाध्याय बना रहता है। अब बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है कि पत्ते को तोड़ लेने मात्र से वो पेड़ से पृथक हो गया, पेड़ अप्रतिष्ठित वनस्पति है और उससे पृथक हुआ जो पत्ता है वो अचित है। यानी वो पत्ता निर्जीव है जो पेड़ से पृथक हो गया है, लेकिन अभी यहां पर अपन देख करके उसका समाधान निकाल लेंगे। कोई ज्यादा कठिन नहीं, क्या अपन टेंशन में आ जाते हैं और लड़ना चालू कर देते हैं, इसी में समाधान नहीं होते। समाधान कभी भी कषाय के आसन पर बैठ करके संभव नहीं है, समाधान जिज्ञासा पूर्वक होते हैं, जानने की उत्कंठा हो। आप एक शास्त्र में नहीं मिल रहा है तो 50 शास्त्र देखो ना, कौन मना करता है आपको अभी 5 मिनट में फैसला करने की क्या आवश्यकता है? इतनी उतावली क्यों? बिल्कुल सब आचार्यों की मान्यताओं को देखो,